तदा ते स्वपदान्तिकम्
मन्त्रेणां श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुनिष्णां च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवे देवे दयिताय कृपाप्तये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्या श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगमनुतापा सिद्धांत अंतहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलं वरसाम्बोधे कदाम्बुजायते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्द नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगमराय ते गौरविर्भाव भूमे स्वाम निर्देशा सज्जन प्रिया वैष्णव सर्वम श्री जगन्नाथाय ते नमः वांछालगत रूपेक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावरान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरविजये नमः
सुनाई दे रहे ना आवाज? तो पिछली बार हमने चर्चा की थी श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के बारे में, जो हमारे गौड़िया आचार्य परंपरा के एक महत्वपूर्ण आचार्य हैं और जिनका वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मुख से करते हैं, जिनके चरित्र की कथा चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, वर्णन करते हुए मध्य लीला के चौथे अध्याय में, कि श्रील माधवेंद्रपुरी की जो भक्ति है वो कैसी श्रेष्ठ है, कितना भगवत सेवा के प्रति उनका अनुराग था। एक जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और संन्यास के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु उन्मत्त या पागल हो उठे और उन्होंने कहा कि मुझे उनका संन्यास कहाँ हुआ था? कटवा में। कटवा नवदीप के पास ही एक स्थान है पश्चिम बंगाल में, तो कटवा नामक उस समय कंटक ग्राम कहते थे उसे, तो उस कटवा में ये लीला हुई थी या चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था। तो संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत इच्छा प्रकट की और वृंदावन वृंदावन कहते हुए वो दौड़ने लगे वृंदावन की ओर। तो उनके साथ श्री नित्यानंद प्रभु थे, तो नित्यानंद प्रभु ने अपने साथ चैतन्य महाप्रभु को लिया और वृंदावन की ओर जाने का बहाना बनाकर वो उनको शांतिपुर ले आए नवदीप के पास। तो जिस नदी के किनारे से जा रहे थे वो गंगा थी, तो नित्यानंद प्रभु कहते थे ये यमुना है। उनको धोखा देते हुए चैतन्य महाप्रभु को वो शांतिपुर ले आते हैं और शांतिपुर में आने के बाद अद्वैत आचार्य के घर में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है और कई सारे नवदीप के जो वासी हैं चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने के बाद वो महाप्रभु को पहली बार मिलते हैं संन्यास के बाद और देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का हेड क्या हुआ है, सर शेव किया गया है। सर में जो गोल्डन बाल होते थे महाप्रभु के और इतने सुंदर दिखते थे चैतन्य महाप्रभु, लंबे लंबे बाल। जब उन्होंने संन्यास लेने के बारे आए तो जो नाई होते हैं बार्बर हैं उनको जब कहा कि आप महाप्रभु के बालों की कटिंग करी है तो वो कटिंग नहीं कर पाते। वो रोने लगता है, जो बार्बर रोने लगता है। तो चैतन्य महाप्रभु के बालों को वो मना करता है काटने के लिए, लेकिन अंतिम समय में उसको कैसे तो तैयार करते हैं और वो काटता है रोते हुए और ये शपथ लेता है कि आज के बाद मैं किसी के भी बाल काटूंगा नहीं, आखिरी है कटिंग, हेयर कटिंग सेरेमनी। तो उसने वो बिजनेस ही छोड़ दिया। क्योंकि सारे लोग सबसे बड़े दुख का अनुभव कर रहे थे जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, विशेषता उनकी जो माँ है सची माता को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था। तो जब संन्यास लिया चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में रुके और वहाँ से निकलने लगे, कहाँ उन्होंने कहा, उनकी माँ ने कहा वृंदावन जाना था, कहते बेटा वृंदावन मत जाओ नज़दीक रहो, क्योंकि नज़दीक रहोगे तो आपके बारे में मुझे पता चलेगा। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वो जगन्नाथपुरी, नज़दीक जगन्नाथपुरी में रहोगे तो लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं नवदीप के वैष्णवाद, या फिर आप वहाँ से कोई आते हैं, कभी मैं आया करूँगी, कभी तुम गंगा स्नान करने के लिए आया कर, उस बहाने से हम मिलेंगे। तो महाप्रभु उस चीज़ के लिए नहीं रुके थे जगन्नाथपुरी में अपनी माँ के कहने पर, लेकिन कुछ और ही रीज़न था। तो लेकिन दोनों रीज़न कहे जा सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी रुकते हैं, तो लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर से जगन्नाथपुरी पैदल जा रहे थे, कितने दिनों की वो लंबी यात्रा थी, तो चैतन्य महाप्रभु रास्ते में चार भक्तों को अपने साथ लेकर जा रहे थे। तो रास्ते में एक स्थान आता है उड़ीसा में, उड़ीसा बंगाल की बॉर्डर पर थोड़ा आगे जाकर, तो वो बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आता है वो जो स्थान है जिसको रेमुना कहते हैं। इनको बोल सकते हैं क्या कि एक घंटे के बाद या बाद में करो, बात करके देखिए क्या सिक्योरिटी से। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी जा रहे थे संन्यास के बाद, तो उड़ीसा में आए और वहाँ बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है छोटा सा जिसको कहते रेमुना। तो रेमुना में चैतन्य महाप्रभु आते हैं और महाप्रभु जब ट्रैवल कर रहे थे पैदल ही, तो कहाँ भी रहते थे, सड़क के किनारे रह जाते थे, उधर ही कुकिंग कर लेते थे, खाते थे नित्यानंद प्रभु वगैरह, रास्ते में रहते थे और वहाँ सोते थे, वहाँ से आगे चलते थे। तो ऐसा उनका यात्रा था, कभी किसी ब्राह्मण ने इनवाइट किया घर में तो घर में रह जाते थे, नहीं तो रोड पे रह जाते थे, या फिर लोगों से राइस मांगते थे महाप्रभु अपने इसमें सन्यास के बाद, और नित्यानंद प्रभु वगैरह कुकिंग करते थे रोड में या किसी भी स्थान में जगह जहाँ मिले, और ऐसी यात्रा उनकी चली। और अंतिम समय में रेमुना नामक एक स्थान है वहाँ आए। तो रेमुना वो स्थान है जिसको रेमुना शब्द उसका अर्थ है कि रमणीय स्थान, रेमुना का मतलब रमणीय। तो क्या हुआ था कि जब भगवान राम चित्रकूट में थे तो उस समय सीता देवी ने इच्छा प्रकट की थी भगवान कृष्ण के डिटीज की पूजा करने के लिए, समथिंग ऐसा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मुझे अपने नोट्स में देखना पड़ेगा जाकर। तो उस समय भगवान ने राम ने अपनी जो बाण होता है ना इसको क्या कहते हैं, तीर से, हाँ एक धनुष होता है और एक तीर होता है, तो तीर के नोक से वो बनाया था क्या, कृष्ण के डिटीज बनाए थे, बहुत सुंदर है आज भी जब जाते हैं। ये उड़ीसा में है रेमुना नाम के स्थान में है रेमुना, हाँ लास्ट ईयर गए थे, अभिषेक रोवी थे हमारे साथ, पता नहीं कृष्ण चाहेंगे तो। तो जब सीता देवी ने कृष्ण स्वयं राम ने वो डीटी बनाया था और सीता देवी वर्शिप करती थी, तो कई सालों तक चित्रकूट में एरिया में वो विग्रह थे। तो ओडिशा के राजा थे चोड़ गंगा देव या समथिंग ऐसे, तो वो जब युद्ध करने के लिए गए तो उन्होंने ये डीटीज को उठा के ले आए वहाँ से, और लाके ओडिशा में उसको एक स्थान में रखे, तो वो रेमुना स्थान था क्योंकि रमणीय, वहाँ पेड़ पौधे सरोवर तालाब ऐसी काफ़ी चीज़ें थी। और भगवान राम भी उस स्थान में गए थे, आज भी भगवान राम से रिलेटेड कुछ स्थान है वहाँ। तो ये राजा वाई इस डिटी की स्थापना करते हैं, तो जिनका नाम है गोपीनाथ। रेमुना ते गोपीनाथ परम मोहन भक्ति करी कैल प्रभु तार दर्शन। तो चैतन्य महाप्रभु रेमुना में जाते हैं और वह गोपीनाथ को देखते हैं और उन बहुत आनंदित हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ को प्रणाम करते हैं, तो गोपीनाथ का जो पुष्प चूड़ा है, पुष्प चूड़ा का मतलब होता है उनको जो मुकुट पहनाया था वो फूलों का था, वो मुकुट गिरता है चैतन्य महाप्रभु के माथे पर सीधा, कृष्ण का जो मुकुट है चैतन्य महाप्रभु के सर पे गिरता है, और ये देखकर सारे भक्त आनंदित हो जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु भी आनंदित होकर नाचने लगते हैं। और जो गोपीनाथ के सेवक थे वो भी आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि ये कैसे संभव है, हाँ कि गोपीनाथ का ये जो मुकुट है इस सन्यासी के सर पे गिरा है। तो इन्होंने क्या किया था, चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्रपुरी के बारे में सुना था, किन से सुना था, अपने गुरु ईश्वरपुरी से सुना था, ये परंपरा श्रौत परंपरा कहते हैं, श्रौत मीन्स सुनना।
गुरु
कौन, नहीं उनके गुरु थे माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी के, हाँ तो ईश्वरपुरी से चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्रपुरी के बारे में सुना था जब ये लोग ट्रैवल कर रहे थे, या नवदीप में सुना था। तो जब ये खीरचूरा गोपीनाथ रेमुना में जब आए चैतन्य महाप्रभु, तो उन्होंने उनको महाप्रभु को थोड़ा लोभ हो गया, मतलब इच्छा हो गई कि खीर खाने को मिल जाए, हाँ महाप्रभु को भी लगा अभी रेमुना में आए हैं तो मुझे खीर खाने मिले। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ रुके और जो भी भक्त अपने साथ थे उनको उन्होंने सुनाया गोपीनाथ की महिमा। तो उन्होंने कहा, पूर्वे माधवपुरी लागे क्षीर कैल छुरी अतएव नाम है क्षीर छोरा हरि, कि पहले एक ऐसे वैष्णव हुए थे जिनका था नाम माधवपुरी या माधवेंद्रपुरी, जो यहाँ आए थे और उनके लिए इस गोपीनाथ ने खीर की चोरी की थी, इसलिए इस गोपीनाथ का नाम क्या है, हाँ क्षीर चोर या खीर चोर गोपीनाथ, ये नाम है। महाप्रभु सुना रहे ये सारी कथा जो हम सुनने जाएंगे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बहुत आनंदित हुए कि ये जो माधवेंद्रपुरी है वो कृष्ण के महान भक्त थे। तो एक दिन ये वृंदावन का भ्रमण करने के लिए चले गए माधवेंद्रपुरी, तो वो गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे। तो गोवर्धन की परिक्रमा करते करते इनकी वृत्ति क्या थी कि ये किसी से मांगते नहीं थे कुछ चीजें, आयाचक वृत्ति है, भगवत कृपा से जो आ जाए। तो भक्त का ये भाई होता है, वो जीवित रहता है गुरु, उसकी हर एक एक्टिविटी किस चीज के लिए होती है, मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। गुरु कह दे कि आपको आज पेड़ के नीचे सोना है, वो खुश है, आनंदित है। और गुरु कह दे कि आज आपको महल में सोना है, जहाँ एयर कंडीशन रूम है, गद्दे हैं बड़े बड़े, हाँ सारी फैसिलिटीज है भौतिक, गुरु कह रहे आज आपको वहाँ सोना है, ही इज हैप्पी, वहाँ सोएगा। वो अटैच नहीं है कि नहीं गुरुदेव मैं नहीं सोऊंगा, मैं तो पेड़ के नीचे सोऊंगा, नहीं। हाँ तो मतलब क्या है, अपनी इंद्रिय तृप्ति, ये क्या है मेरे इंद्रिय तृप्ति। तो गुरु कहे इसलिए कहा जाता है कि जो बिगेस्ट ऑस्टेरिटी क्या है इस वर्ल्ड में, कि फ्री विल को त्याग देना, बिगेस्ट ऑस्टेरिटी मतलब अपनी स्वतंत्रता को। सारी तपस्या आप कर लेंगे, पहाड़ यहाँ से वहां उठा के रख देंगे, सारी सफाई कर देंगे कुछ, लेकिन जो फ्री विल है उसको त्याग करना बहुत कठिन है। फ्री विल को क्या कहेंगे, अपनी स्वतंत्रता, हम स्वतंत्र होना चाहते ना। उदाहरण जैसे यही है उदाहरण जो गुरु का मैंने बताया, गुरु कहते हैं ना शिष्य को, तो फ्री विल स्वतंत्रता। क्योंकि जो शिष्य होता है या भक्त होता है वो क्या करता है, अपनी जो स्वतंत्रता है गुरु के चरणों में अर्पित करता है। तो फिर गुरु उसका इस्तेमाल जैसे करना चाहिए वैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए तैयार होता है। तब फिर गुरु क्या करता है, फुल्ली उस शिष्य को ट्रेन करता है, ट्रेन क्या कहते हैं, ट्रेनिंग कर सकता है, प्रशिक्षित कर सकता है, अन्यथा नहीं पॉसिबल। इसलिए बहुत बड़ी ऑस्टेरिटी है। तो इनका ये स्वभाव था माधवेंद्रपुरी का कि ये आयाचिक वृत्ति के थे, कृष्ण कृपा से जो मिल जाए। तो क्योंकि जो भक्त होता है वो मटेरियल चीज के लिए सेपरेटली एंडेवर नहीं करता, ये एक गुण है। लेकिन भौतिकतावादी भौतिक सुख के लिए क्या करते, सेपरेटली एंडेवर करते हैं, है ना। तो वो उनको मिजरेबल सिचुएशन में फेंक देता है। हाँ भक्त आप देखो, हमारे भक्त जैसे कई डिवोटीज भक्त बनते हैं तो बड़ा इजी हो जाता है, हमें प्रसाद के लिए एंडेवर नहीं करना पड़ता, करते हैं। हमें यह भी पता नहीं धोती कुर्ता कितने रुपए का आ रहा है, हाँ लेकिन कितना महंगा होता है। शॉप में आप खरीदोगे, जब आप जॉब करते हो तब पता चलता है एक धोती कुर्ता खरीदने में कितना पैसा लगता है। हाँ तो मतलब जो भक्त है वो एंडेवर नहीं करता, लेकिन सावधान भी होता है, कृष्ण की एनर्जी है उसको यूज करने में। ये किसकी एनर्जी है, कृष्ण की एनर्जी है, कॉन्शियस रहता है भक्त। और जैसे लोग मान या सम्मान के लिए भी बहुत लालायित रहते हैं, है ना, उत्साहित रहते हैं, तो लेकिन भक्त एंडेवर नहीं करता, वो क्या करता है, वो कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है। तो भौतिकवादियों का क्या है कि वो कृष्ण को एंजॉय करना चाहते हैं। हाँ कल मैं पुनीत प्रो को बता रहा था कि कृष्ण को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण क्या, भक्त क्या करता है, कृष्ण को एंजॉयमेंट देना चाहता है, तो सारे उसको आनंद प्राप्त होता है। प्रभुपाद उदाहरण देते थे दर्पण का, हाँ आप अपना फेस शीशा में देख रहे हो और आपको तिलक लगाना है, तब उसको लगाओगे तिलक प्रतिबिंब को, यहाँ लगेगा नहीं, आपको यहाँ लगाएंगे तो यहाँ सारी चीजें लग जाएंगे, वैसे ही है। तो कृष्ण है जिनको हम एंजॉयमेंट देंगे तो नेचुरली हमें स्वाभाविक रूप से एंजॉयमेंट या आनंद मिलेगा। क्योंकि मटेरियल जो आनंद है वो दिखता है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, आप समझ रहे, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भौतिक आनंद क्या है, एंजॉयमेंट हमारे हृदय में अभी भी है, मटेरियल हैंकरिंग अनुभव होता है जब अट्रैक्ट करती है भौतिक चीजें माया। तो हम जो भौतिक आनंद दिखता है वो दिखता है लेकिन ये नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता है ना। स्त्री सुंदर दिखती है लेकिन आप आनंद वैसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, गाड़ी सुंदर दिखेगी नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। लेकिन आध्यात्मिक आनंद का क्या है, वो दिखता नहीं है लेकिन आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो प्रभुपाद ने कहा कि आपको इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है भौतिक आनंद के लिए, लेकिन आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करना है तो आपके पास बस जस्ट प्रभुपाद कहते आपके पास केवल दो हाथ होने चाहिए और एक मुंह होना चाहिए, बस ताली बजाओ और बोलो
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम।
एक्सट्रेसी में आ जाओगे आप, शांत एंड बी हैप्पी बस। लेकिन भौतिकता के लिए इतना कठोर स्ट्रगल, वो स्ट्रगल कैसे है, जैसे कि प्रभुपाद कहते गधा, टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य के इंट्रोडक्शन में, गधा गधी के पीछे भागता है हाँ कुछ आनंद के लिए, लेकिन जो फीमेल गधा होता है क्या कहते जो माता गधी होती है जो फीमेल गधा है वो किक लगाता है, इतना किक आपने नहीं देखा होगा गांव में, कई बार देखा है कि दे आर किकिंग लाइक रनिंग, दांत टूटने लगते हैं गधे के हाँ, लेकिन फिर भी वो आनंद के लिए पीछे पीछे भागता है हाँ, वैसे लिविंग एंटिटी है। तो इसलिए नहीं, जगत में हमें चीजें सुखी नहीं देंगे। जैसे भक्तिदास महाराज ने बहुत एक अच्छा उदाहरण दिया था, वो कहते हैं कि एक क्रेन, क्रेन को क्या कहते बगुला, क्रेन बगुला था हाँ, वो फिश पाना चाह रहा था, फिश हाँ फिश खाना, मछली हाँ मछली खाना चाह रहा था, तो देखा कि अरे मछली मिल ही नहीं रही है, तो तालाब के वहाँ एक बैल आ जाता है, बैल पानी पी के निकलता है ऐसे, तो बैल का अंडकोश है ना लटकता है पीछे, आपने देखा बैल को कभी हाँ, उनको अंडकोश होता है हाँ जो लटकता है, तो इस क्रेन को लगा कि दो मछलियाँ लटक रही है तो ये जो बगुला है उस हैप्पीनेस के लिए उसके पीछे भागता है हाँ, ओ वंडरफुल टू मछली जा बहुत अच्छी है, जाते अपना मुंह उसको दोनों पाव के बैल के पीछे के पाव के बीच डालता है, मैं भी टच करना वाला ही था तो एक जोरदार बैल एक लात मार देता है और कई दूरी पर गिर जाता है हाँ, और आग खुलता है वेर इज दैट मछली कहाँ है वो मछलियाँ, फिर ओ अभी तक नहीं मिली मुझे, फिर जाता है और फिर ट्राई करता है, फिर थप्पड़। तो ये मटेरियल वर्ल्ड का जो ट्राइंग है हाँ, सेपरेटली एंजॉयमेंट को प्राप्त करना वो वैसा ही है जैसे बगुले को लाते मिल रही थी। तो इसलिए भक्त भौतिक इनके लिए एंडेवर नहीं करता सेपरेटली हाँ हाँ, क्योंकि आप देखिए धर्म को अर्थ फॉलो करता है हाँ, धर्म को क्या करता है अर्थ फॉलो करता है, व्यक्ति आजकल क्या है अर्थ को प्राप्त करना चाहते वो है ना, तो इसलिए वो कष्ट में है। तो माधवेंद्रपुरी का एक गुण था कि वो अयाचिक वृत्ति के थे, सेपरेटली किसी और चीज के लिए एंडेवर नहीं करते थे, कृष्ण कृपा से मिले हाँ उसमें संतुष्ट होते थे हाँ। तो यही है भक्त किसी भी सिचुएशन में होता है, और मैं भी कई ट्रबल्स होती है तो कृष्ण सोचता है कि ये इन्वायरमेंट मेरे प्योरिफिकेशन के लिए कृष्ण ने ये किया है हाँ, जनरेट किया है मेरे प्योरिफिकेशन के लिए। कोई भी सिचुएशन आती है भक्त के जीवन में हाँ, तो वो क्या सोचता है कि मेरे प्योरिफिकेशन के लिए, और वही भक्त हाँ पवित्र होने लगता है तेजी से। तो इसलिए माधवेंद्रपुरी कोई भी चीज मांगते नहीं थे, और जो भगवत कृपा से आ जाए उसको स्वीकार करते थे। तो वो गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, तो उस समय वो गोविंद कुंड में आते हैं। गोविंद कुंड वो स्थान है जहाँ इंद्र ने कृष्ण से क्षमा मांगे थे, क्योंकि इंद्र ने अपराध किया था गोवर्धन के ब्रजवासियों के ऊपर बारिश की वर्षा करके तेज। तो ये क्षमा मांगने के लिए सुरभि गाय के साथ आते हैं और कृष्ण का अभिषेक करते हैं कई प्रकार के पानी से, दूध से। कृष्ण गवे चरा रहे होते हैं वहाँ, तो आके प्रणाम करते हैं और उनका अभिषेक करते हैं। तो वो जो जल था उसका गोविंद कुंड बना है, आज भी वो कुंड है। तो वहाँ माधवेंद्रपुरी का भजन कुटीर भी है, आज भी जाते गोवर्धन तो माधवेंद्रपुरी का वहाँ निवास स्थान और भजन कुटीर है, जहाँ माधवेंद्रपुरी पाद भजन करते थे। तो ये जब वहाँ बैठे, इन्होंने तो कुछ खाया नहीं था और मांगते नहीं थे, मिल जाए तो ठीक है, हम प्रसाद में बैठते कोई चीज स्किप कर जाए, कोई भक्त स्वीट राइस मुझे महाप्रसाद देना भूल जाए, जाते जाते मुझे आगे करके जाए, तो इतना लाउडली कॉल करते हैं जितना कृष्ण को भी नहीं करते हैं, लाउडली कॉल जोर से चिल्लाते हैं। तो माधवेंद्रपुरी ऐसे बैठे थे और अपने भजन में मग्न थे, भगवान नाम का उच्चारण कर रहे थे। तो उसी समय एक छोटा सा बालक आता है और कहता है कि ओ बाबा जी, या माधवेंद्रपुरी पा नाम तो पता नहीं लेकिन, और वो दूध लेके आता है एक मटके में, वो ये आपके लिए दूध है। तो माधवेंद्रपुरी कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं भूखा हूँ। तो वो कहते हैं कि हमारे गांव में कोई भी भूखा नहीं रह सकता, जो कुछ लोग मांग के खाते हैं उनको हम दे देते हैं, और कुछ लोग दूध ग्रहण करते केवल, और कुछ लोग कुछ मांगते नहीं हैं किसी से, तो मैं उनको स्वयं जाकर ये आहार या भोजन देता हूँ। और मैं जब जा रहा था तो हमारे गांव की श्रेया इस कुंड में पानी लेने के लिए आई थी और उन्होंने कहा कि ये बाबा जी भूखे हैं, तो उनके लिए कुछ दूध उन्होंने भेजा है उन श्रीयों ने, तो मैं आया हूँ। और माधवेंद्रपुरी कहते कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तो क्योंकि बहुत सुंदर वो बालक था, और कहा कि मैं वो बर्तन आप पी लो दूध और बर्तन यहाँ ही रख दो, आप मटका में लेने के लिए आ जाऊँगा। तो माधवेंद्रपुरी वो दूध पीते हैं और रख के दूध दूध का जो मटका है धो के रखते हैं, लेकिन वो बालक आता ही नहीं वापस। तो लेकिन माधवेंद्रपुरी दूध पीने के बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं, तो जो बालक उनके लिए दूध लेके आया था वही बालक उनको सपने में दिखता है, और वो स्वयं कृष्ण ही थे, उस बालक के रूप में आए थे ग्वाल बाल के। और कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण सपने में उस बालक के रूप में आते हैं और माधवेंद्रपुरी का हाथ पकड़ते हैं और ले चलते हैं एक स्थान में गोवर्धन के, कहते कि देखो ये जो कुंज है, ये जो झाड़ियाँ हैं, इसके नीचे मैं हूँ, भगवान का विग्रह था उसके नीचे गोपाल जी का, तो मैं इसके नीचे हूँ और कई साल पहले मुझे इसके नीचे डाला गया है। जो म्लेच्छ यवन लोग जब आक्रमण कर रहे थे, मंदिर तोड़ रहे थे, तो उस समय पुजारी ने क्या किया था, जमीन के नीचे गोपाल जी को रखा था। तो माधवेंद्रपुरी को कहते कि मैं इसके नीचे, वो झाड़ियों के नीचे आप लोगों की सहायता के द्वारा मुझे निकालो। और श्री गोपाल नाम मोर गोवर्धन धारी, मेरा नाम क्या है, गोपाल है, और मेरा काम गोवर्धन धारी। श्री गोपाल नाम मोर गोवर्धन धारी, कहते कि मेरा नाम गोपाल है और मैं गोवर्धन को धारण करता हूँ, और ब्रजेर स्थापिता में यहाँ अधिकारी, मेरी स्थापना किसने की थी, वज्रनाभ ने। वज्रनाभ आप जानते हैं कौन थे, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, उनके पुत्र अनिरुद्ध, उनके पुत्र वज्रनाभ। तो वज्रनाभ ने इन विग्रहों की स्थापना की थी, वृंदावन में सारे जो विग्रह हैं उनकी स्थापना की थी। तो उनमें से गोपाल थे, गिरिराज के ऊपर स्थापित थे गोवर्धन के ऊपर। तो फिर माधवेंद्रपुरी उस सपने से जग जाते हैं। मैं बहुत शॉर्टकट बताऊंगा आपको काफ़ी विस्तार से, कभी हम फ्यूचर में पढ़ सकते हैं डिटेल में कृष्णा बुक के बाद। तो मैं वज्रनाभ के द्वारा स्थापित था और आप लोगों की सहायता से मुझे यहाँ से निकालो। तो उठते ही माधवेंद्रपुरी ब्रज के कुछ लोगों को लाते हैं और उनकी सहायता से उन झाड़ियों को तोड़ते और एक विग्रह दिखता है गोपाल जी का, उसको उन निकालते हैं और उनकी स्थापना गोवर्धन के ऊपर, आज भी जाते तो एक वाइट टेम्पल है उस मंदिर में स्थापना करते हैं माधवेंद्रपुरी। मंदिर नहीं था पहले उस समय, तो माधवेंद्रपुरी एक पत्थर लेते हैं, उस पत्थर के ऊपर उनकी स्थापना करते हैं और फिर ब्रज के आसपास के सारे गाँव में, वृंदावन के सारे गाँव के लोग आते हैं और कई प्रकार की सेवाएं करना शुरू करते हैं। तो माधवेंद्रपुरी बहुत एक्सपर्ट थे कृष्ण सेवा के लिए, वो प्रॉपर उनका अर्चन करते हैं, उनके लिए तुरंत टेम्पल बनाते छोटा सा, उनके लिए अन्नकूट फेस्टिवल मनाते हैं, कई प्रकार के भोग ऑफरिंग करते हैं, 56 से भी ज़्यादा प्रकार के रोज कितनी बार, और कई लोगों को इन्वाइट करते और अलग अलग गाँव के लोग रोज आते थे और अपनी ओर से स्पॉन्सर करते थे बिग बिग फिश गोपाल जी के लिए भोग ऑफर करते थे। कोई मथुरा के धनी लोग आते थे भगवान के लिए, गाय दान में देते थे, जमीन देते थे, बर्तन देते थे, धन देते थे। तो कुछ ही दिनों में गोपाल के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति हुई। हाँ, और ये माधवेंद्रपुरी स्वयं आके अपने रहते थे एक स्थान में, तो उस जहाँ रहते थे उसका नाम है जतिपुरा। जतिपुरा, जति या यति का मतलब होता है सन्यासी। हाँ, उस गांव का नाम यतिपुरा है। बंगाली में य का उच्चारण नहीं करते, य को ज कहते हैं, जैसे ये तुम्हारा शरण ले हम पढ़ते, लेकिन नहीं गाते कैसे जे तुम्हारा शरण, हाँ वह भी नहीं कहते वो। हाँ, बामन, वामन कहते ना हम उसको, बामन बामन। हाँ भी, हाँ वृंदावन भी नहीं, वृंदावन वृंदावन। हाँ, जतिपुरा उधर ही है, गोविंद कुंड से आगे जाते हैं। तो माधवेंद्रपुरी वहाँ रहते थे। तो ऐसे कई दिनों तक सेवा करने के बाद स्वयं गोपाल जी माधवेंद्रपुरी पाद के सपने में आते हैं और कहते हैं कि दो साल तक वो सेवा करते हैं और एक रात माधवेंद्रपुरी को सपना आता है जिसमें गोपाल कहते हैं, गोपाल कहे पुरिया माता पना ही जाए, मलय ज चंदन लेप तबे से जुड़ाए। तो कहते हैं कि हे गोपा माधवेंद्र माधवेंद्रपुरी कि मेरा जो शरीर है बहुत गर्म है, तप्त है, ताप नहीं जा रहा है, तो ये तभी शांत हो सकता है या शीतल हो सकता है जब ये मलय या मलय प्रदेश का जो चंदन है इसका लेप मेरे शरीर पर लगाएंगे तभी यह शांत हो जाएगा या शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतने सालों तक भगवान गोपाल जी जमीन के अंदर थे तो बहुत गर्मी हो गई थी उनको, और ऊपर माधवेंद्रपुरी ले लाने के बाद कई हजार घड़ों से जल से स्नान करवाया, मसाज किया, कई प्रकार के तेल लगाए, फिर भी उनका शरीर की गर्मी नहीं गई थी। तो एक दिन ये कहते हैं कि जाओ नीलाचल जाओ उड़ीसा, वहाँ चंदन मिलता है स्पेशल, वो लाओ मेरे लिए और उससे मुझे क्या करो, हाँ लेप करो। तो माधवेंद्रपुरी तुरंत दो तीन सन्यासी, बंगाली सन्यासी भक्तों को लगाते हैं उनकी सेवा में, और ड्यूटी वर्शिप करो, ये करो, सब करो, और ये माधवेंद्रपुरी स्वयं निकलते हैं अपने गोपाल के लिए। हाँ, ये ना कि किसी और को भेज देते हैं, स्वयं निकलते हैं। और कैसे, वृंदावन से ओडिशा जाना है, कोई ट्रेन नहीं, कोई एरोप्लेन्स नहीं है, बैलगाड़ी भी नहीं उनके पास, पैदल निकलते माधवेंद्रपुरी केवल गोपाल की खुशी के लिए। हाँ
40 किलो,
हाँ जितना भी वो जाते यहाँ से लाने के लिए, तो लेकिन कितना यह है कष्ट है ना भगवत सेवा के लिए, स्वयं भगवान आदेश दे रहे हैं जाओ। तो भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए हर एक चीज स्वीकार करना स्वीकार करता है ट्रबल। तो ये खासियत होती है भक्त की कि भगवान की प्रसन्नता के लिए वो ट्रबल्स लेता है। और माधवेंद्रपुरी वहाँ से शांतिपुर जाते हैं और शांतिपुर में अद्वैत आचार्य को दीक्षा देते हैं, माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं अद्वैत आचार्य, और कई डिवोटीज को दीक्षा देते हैं, और वहाँ से वो निकलते हैं बंगाल से, तो वो आते हैं रेमुना, तो रेमुना में आते हैं और गोपीनाथ को देखकर रेमुना ते कैल गोपीनाथ दर्शन तार रूप देखिया है लवी वलमान, तो बहुत खुश हो गए गोपीनाथ के विग्रह को देखकर रेमुना में माधवेंद्रपुरी, और नाचने लगे गाने लगे, और उन्होंने पूछा कि इस गोपीनाथ को क्या क्या भोग लगाया जाता है, और देखा कि गोपीनाथ की इतनी अच्छी प्रकार से सेवा हो रही है और उत्तम प्रकार के भोग लगाए जा रहे हैं, हाँ तो ये जानना चाह रहे थे, तो एक ब्राह्मण से पूछा, तो उस ब्राह्मण ने उनको विवरण दिया कि क्या क्या चीज़ गोपीनाथ को भोग लगाते हैं, हाँ तो उनकी जिज्ञासा भी किस चीज़ के लिए है, गोपीनाथ की सेवा के लिए, अपने के लिए नहीं, क्या क्या भोग लगाते हैं बताइए, केक लगता है क्या उसमें, मेरा केक बहुत प्रिय है, हाँ इस भावना से नहीं, हाँ महाप्रसाद में क्या क्या है मेरे, मैं भोगना चाहता हूँ, नहीं क्या कि मेरे गोपाल के लिए मैं जब वृंदावन जाऊंगा तो उसी प्रकार के भोग उनको अर्पण करूंगा, यह है कृष्ण संप्रश्न एनात्मा, कृष्ण से संबंधित प्रश्न पूछना, हाँ ये इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं जो माधवेंद्र, कृष्ण संप्रश्न मतलब कृष्ण से संबंधित प्रश्न, भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन आता है एक चीज का, तो जब उनको बोला तो माधवेंद्रपुरी वो ब्राह्मण ने कहा, संध्याय भोग लागे क्षीर अमृत के लिनाम द्वादश पात्र भरे अमृत समान, कि शाम के समय खीर ऑफर्ड होती है अमृत के लिए नाम की, जो 12 मटके होते हैं घड़े जो भोग लगाते हैं अमृत के लिए, अमृत के लिए मीन्स अमृत के समान, जिसका क्या है स्वाद है अमृत से भी बढ़कर, तो कृष्ण को खीर बहुत प्रिय है, हाँ इसलिए कहा जाता है कि कार्तिक में भगवान को खीर ऑफर करने चाहिए डेली, स्वीट फ्राइज कृष्ण रोज खाते हैं, तो उस ब्राह्मण ने कहा कि ये खीर पूरे पृथ्वी में फेमस है अमृत के लिए, गोपीनाथेर खीर इस नाम से पूरे इसमें में विख्यात है अमृत के लिए खीर, तो जैसे ही ये सोच रहे थे कि मुझे भी थोड़ा चखने को मिल जाए तो मैं भी, भाव क्या था गोपीनाथ के लिए बनाऊंगा, तो लेकिन उसी समय पुजारी ऑफर करने के लिए जा रहे थे तो इनको घृणा आई कि अभी तक भगवान को ऑफर ही नहीं हुआ, लेकिन मेरे मन में विचार आए कि मैं उसको चखूं, हाँ तो यह अपराध होता है, हाँ इसलिए भोग लगाते हैं तो पर्दा लगाया जाता है या फिर ढक के ले जाते हैं भगवान का भोग, है ना कि कोई देखे ना, हाँ क्योंकि हमारे इंद्रिया सेंसेस क्या है, देखकर हम उसको ये करते हैं फुल्ली, हाँ एक प्रकार से आंखों से एंजॉय करते हैं, हाँ तो उनको बड़ा लज्जा महसूस हुई और उन्होंने क्या किया, आरती का दर्शन किया और चले गए, और मार्केट में जाके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने लगे माधवेंद्रपुरी, और बहुत दुखी थे कि मैं कितना नीच हूँ कि भगवान ने अर्पण करने से पहले ही मैंने ये इच्छा व्यक्त की कि मैं खाना चाहता हूँ जो ये भोगाज हैं, तो माधवेंद्रपुरी कीर्तन कर रहे थे तो भगवान ने जाना उनकी बात को, और जो शाम के समय जो पुजारी था उन्होंने अल्टर बंद किया और पर्दा लगाया और वो खीर के बर्तन लाए रखे एक स्थान में और पुजारी सो गया, तो भगवान उनके सपने में आते और उनको कहते कि उठो, तो एक जो खीर का पात्र है मैंने क्या किया है, मेरे कपड़े के पीछे छुपा के रखा है, उठो और उसको ले लो और माधवेंद्रपुरी नाम के मेरे एक भक्त हैं उनको दे दो, हाँ तो ये जो आश्चर्यचकित होता है पुजारी है उठता है और दौड़ता है अल्टर के पास और देखता है कि वास्तव में गोपीनाथ ने खीर का पात्र चोरी कर लिया है, हाँ और वो उठाता और बाहर निकलता है, और माधवेंद्रपुरी अपने आप को इतना नीच मान रहे थे, लज्जा महसूस कर रहे थे कि कितना मैं ये हूँ नीच हूँ, तो उस समय पुजारी अपने हाथ में वो इसका पात्र लेकर, खीर का जो पात्र है वो लेकर वो मार्केट में गया और मार्केट में जाकर चिल्लाने लगा, क्षीर लहये जार नाम माधवपुरी, तोमा लागी गोपीनाथ क्षीर कैला चोरी। उन्होंने कहा, उन्होंने अपने हाथ में वो क्षीर का पात्र रखा था और वो जोर जोर से पुकारने लगे कि माधवेंद्रपुरी कौन है जिनके लिए गोपीनाथ ने खीर की चोरी की है, हाँ आप इसको स्वीकार करो। तो फिर धीरे धीरे ऐसे घूमते हुए माधवेंद्रपुरी के पास पहुंचते हैं और वो कहता है कि आप इस खीर को स्वीकार करो क्योंकि तीन लोकों में आपसे ज़्यादा भाग्यवान कोई नहीं है, क्योंकि स्वयं कृष्ण ने आपके लिए खीर की चोरी की है। तो ये फिर माधवेंद्रपुरी पुजारी को दंडवत करते हैं और वो खीर के पात्र को स्वीकार करते हैं और माधवेंद्रपुरी प्रेमाविश में प्रेम में पागल हो जाते हैं कि गोपीनाथ ने मेरे लिए खीर चोरी की है, और उनको नमस्कार करते हैं पुजारी को और उसको ग्रहण करना शुरू करते हैं, खीर को खाते हैं। खीर को भी खाते हैं लेकिन साथ साथ खीर का जो मटका था मिट्टी, उसके टुकड़े करके अपने इसमें बांधते हैं और मिट्टी को भी पूरा मटके को खा लेते हैं माधवेंद्रपुरी। हाँ, वो कृष्ण ने चोरी किया था वो जो खीर का मटका। हाँ, इतना फेथ, हाँ नीड्स, इसलिए महाप्रसाद या प्रसाद में क्या होना, प्यूरिफिकेशन तभी होता है कितनी मात्रा में आपका फेथ है गुरु के इंस्ट्रक्शन में, नाम में, ऑर्डर्स में, प्रसादम में, वैष्णव में, हाँ उसके अनुसार आप उन्नति करोगे। फेथ नहीं है, फेथ नहीं है इतना स्ट्रांग और रोज हमें महाप्रसाद की प्लेट मिल जाए तभी भी प्योरिफिकेशन नहीं होगा। वो एरोगेंट टेंडेंसी वैसे ही हमारे हृदय में बनी रहेगी। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है जो फेथ है। तो माधवेंद्रपुरी को इतना स्ट्रांग श्रद्धा था। हाँ, फेथ क्या है, कृष्णदास कविराज कहते श्रद्धा शब्दे कहले सदृढ़ विश्वास, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म करता है। श्रद्धा वो है कि इतना कन्विंस होता है कि कृष्ण भक्ति करूंगा तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं मुझे इस जगत में, वो है स्ट्रांग फेथ। कृष्ण सेवा करूंगा, किसी और संसार की सेवा करने की आवश्यकता नहीं मुझे, वो फुल्ली ये रहता फेथ, जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज को था। हाँ, सुभाष चंद्र बोस ना शायद कोई कहते थे ना कि अभी भारत को आज़ाद करने दीजिए तब आप ये भक्ति भक्ति का प्रचार करो, लेकिन उनका इतना फेथ था नहीं। हाँ, जो भक्ति है ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं है कि आप स्वतंत्र हो आपका देश या परतंत्र हो, हाँ ये सबके लिए लागू होता है। जैसे प्रभुपाद को इतना स्ट्रांग कि ये कृष्ण भावना हर एक जीव के लिए है। हाँ, हमें थोड़ा ये भी हो सकता है, ओ एजुकेटेड लोगों के लिए है, अनएजुकेटेड के लिए नहीं है, इसके लिए है उसके लिए नहीं, हाँ तो लेकिन नहीं, प्रभुपाद इतने कन्विंस थे। तो इस प्रकार से श्रद्धा उनकी थी भगवान के उस प्रसाद में और उन्होंने उसको भी ग्रहण किया। तो लेकिन ये सब जगह फेमस हो गए थे माधवेंद्रपुरी उसी क्षण। हाँ, भगवान जिनके लिए खीर चोरी करते हैं मतलब आप सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना प्रिय है कृष्ण के लिए, तो हर कोई उनको रिस्पेक्ट देने लगा और उनकी प्रशंसा करने लगा। तो उनको अच्छा नहीं लगा माधवेंद्रपुरी को। हाँ, वैष्णवेर प्रतिष्ठा शुकरेर विष्ठा, जो सम्मान है प्रतिष्ठा के हम अभिलाषी चाहते हैं, हमारे हृदय में स्ट्रांग डिजायर है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते वो क्या है, शुकरेर विष्ठा। शुकरेर विष्ठा कैसी होती है पता नहीं, लेकिन शुकर मीन्स जो मनुष्य मल त्यागते हैं और जिस मल को शुकर खाता है, पिक खाता है, वो विष्टा की कैसी हो सकती है और निकृष्ट हो सकती है। तो जो डिजायर है मान सम्मान, हाँ इस अभिलाषा की, तो वो इस प्रकार से है। हाँ, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं तो ये नहीं चाहते थे इस प्रतिष्ठा के कारण। अब उन्होंने वो रेमुना स्थान छोड़ा और निकल पड़े कि मैं जगन्नाथपुरी जाता हूँ ताकि किसी को पता नहीं चले। तो कहते हैं कि कृष्ण प्रेमे प्रतिष्ठा चले संगे गड़ाइया। वो कृष्ण प्रेम जिसमें उदित हो जाता है, कृष्ण भक्ति जिसके पास होती है तो प्रतिष्ठा उसके पीछे फॉलो करती है उसको। हाँ वो जहाँ जाता है वहाँ हाँ उसको सम्मान मिलता है। तो माधवेंद्र पुरी जगन्नाथपुरी पहुँचने से पहले ही ये जो फेम है वो पहले ही पहुँचा था, और जगन्नाथपुरी में हर कोई व्यक्ति अवेयर हो गया था माधवेंद्र पुरी के बारे में। पहुँचते ही लोग स्वागत करने लगे, आप ही माधवेंद्र पुरी हैं, बस इनके लिए जो चंदन लाना था राजा, वहाँ के राजा जो गजपति राजा वो भी इनकी हेल्प करते हैं, सारे लोग इनकी हेल्प करते हैं वहाँ पुरी में, हर कोई इनकी प्रशंसा करता है, और वो लोग स्वयं ही चंदन इकट्ठा करके देते हैं, दो तीन ब्राह्मण उनके साथ देते और पेपर्स देते हैं ताकि जो टैक्स देना पड़ता था बॉर्डर में, और धन भी देते हैं इनके साथ, हाँ इतना सारा अरेंजमेंट सब कर देते लोग। हाँ तो ये प्रतिष्ठा पहले पहुँचे थे। तो माधवेंद्र पुरी वहाँ से चंदन कलेक्ट करके फिर वापस आते हैं गोपीनाथ, क्षीरचोर गोपीनाथ में आते हैं, वहाँ रुकते हैं, क्योंकि अभी वो उस समय तो किसी ने पहचाना नहीं था उनको, अभी तो सब पहचान रहे थे पुजारी वगैरह, तो उनको रहने के लिए स्थान दिया, उनके लिए खीर महाप्रसाद दिया सब कुछ। तो देखा वो सो रहे थे तो पुनः गोपाल, उनके जो प्रिय गोपाल जो वृंदावन में थे वो सपने में आए, कहते कि ये माधवेंद्र पुरी देखो कि मुझे तो चंदन प्राप्त हुआ है, लेकिन तुम क्या करो अभी, तुम्हारे पास जो इतना चंदन है तुम्हें कितना कष्ट उठाना पड़ेगा वहाँ लाने में, तुम क्या करो ये जो चंदन है इसको घिसो और गोपीनाथ के शरीर में लगाओ, तो गोपीनाथ को लगाओगे तो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, हाँ मुझे शीतलता मिलेगी। हाँ तो क्योंकि गोपीनाथ का शरीर और मेरा शरीर क्या है, एक ही है, हाँ तो डीट इज जो प्रभुपाद ने एस्टेब्लिश किए हैं वो एक जैसे ही है, अंतर नहीं है, इधर सेवा कर रहे हैं हम राधा पार सारथी के तो श्याम सुंदर वृंदावन में उसी को स्वीकार कर रहे हैं, इस भावुकता में नहीं रहे हमें। यहाँ कहते हैं गोपीनाथ हमारा से एक ही अंग है, हाँ गोपीनाथ हमारा से एक ही अंग है। तो कई बार लगता है कि नहीं हम वहाँ सेवा या यहाँ सेवा या वहाँ की ड्यूटीज यहाँ की ड्यूटीज, अच्छा है वो आकर्षण, लेकिन कृष्ण क्या करते हैं इस फॉर्म में वो हमसे सेवा ग्रहण करते हैं, हाँ वही श्याम सुंदर कृष्ण यहाँ, हाँ जो राधा पार सारथी भी हैं। इसलिए माधवेंद्र पुरी गोपीनाथ को सारा लोग लगा देते हैं, चंदन घिसते हैं और गोपीनाथ के शरीर में लगाया जाता है वो जो सारा चंदन गर्मी के दिनों में, और गोपीनाथ को चंदन लगाया था तो सारे लोग आनंदित हो गए हाँ वो चंदन लगाने से, और ऐसा वर्णन आता है कि 21 दिन तक, हाँ 21 दिन तक ये चंदन गोपीनाथ को लगाया गया तब वो ख़त्म हो गया। हाँ तब से हमारी जो गौड़िया परंपरा है उसमें चंदन यात्रा शुरू हुआ था, चंदन यात्रा फेस्टिवल। तो जितने भी डीटीज है गौड़ियाज के चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी जिनकी उपासना करते हैं वो डीटीज को उस पीरियड में अक्षय तृतीया से शुरू होता है, मई में आता है, चंदन लगाते 21 दिन के लिए कृष्ण को, कृष्ण वो स्वीकार करते हैं, क्योंकि वैसे ही वो क्या होता है गर्मी का दिन होता है। तो इस प्रकार से भगवान उनकी सेवा करते हैं वहाँ स्वीकार, क्योंकि कृष्ण एक्चुअली देखते हैं कि मेरे लिए मेरा भक्त ट्रबल स्वीकार कर रहा है, कृष्ण और आनंदित होते हैं और स्वयं ही फिर रिलीफ दे देते हैं। देखो अब उनको वृंदावन ले आना था तो गोपाल ने यहाँ ही अरेंज किया कि मुझे यहाँ ही लगा, तो लेकिन कृष्ण जस्ट देखते हैं कि आप कितने तैयार हो मेरे लिए जो सफरिंग्स हैं वो स्वीकार करने के लिए मेरी प्रसन्नता के लिए, हाँ तो कृष्ण फिर वो कम कर देते हैं, जस्ट देखते हैं कि मेरा जो भक्त है वो तैयार है कि नहीं। तो इस प्रकार से काफ़ी विस्तार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील माधवेंद्र पुरी का ये चरित्र कथा सुनाया था नित्यानंद प्रभु का और भक्तों को रेमुना में, और उस समय माधवेंद्र पुरी फिर से वृंदावन नहीं जाते, कहाँ रहते हैं उधर ही रेमुना में रहते हैं, और माधवेंद्र पुरी अपना शरीर भी वहाँ ही छोड़ते हैं कृष्ण भजन करते हुए। तो आज भी गोपीनाथ के थोड़ी दूरी पर जाते हैं तो माधवेंद्र पुरी जी का समाधि है। हाँ, हम गए थे इस बार सारे भक्त। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ की सेवा करते हैं और गोपाल की भी सेवा करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत आदर देते थे माधवेंद्रपुरी को, और क्या कहते थे कि माधवेंद्रपुरी ने क्या किया है हमारे संप्रदाय में, जो रस की भक्ति है उसको प्रकट किया है। हाँ, माधुर्य रस या जो इन रसों का वर्णन है, स्पेशली माधुर्य रस की प्रधानता का वर्णन या प्रदर्शन श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने किया है। तो माधवेंद्रपुरी अपने शरीर छोड़ने से पहले विरह प्रकट करते हैं, सेपरेशन कृष्ण से, और एक श्लोक का उच्चारण करते थे हर समय। और चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास कविराज कहते हैं कि वो एक श्लोक ऐसा श्लोक था जो केवल तीन लोग ही जानते थे, और तीन ही लोग ये आस्वादन करते थे। एक थे श्रीमती राधा रानी, दूसरे थे श्री चैतन्य महाप्रभु, और तीसरे थे माधवेंद्रपुरी। बस इन तीनों को ये श्लोक पता था और उसका आस्वादन करते थे ये तीनों। और ओरिजिनली ये जो श्लोक है श्रीमती राधा रानी ने उच्चारण किया था जब कृष्ण मथुरा चले गए थे। और वो क्या था, अपने शरीर छोड़ते समय माधवेंद्रपुरी इसका वर्णन उच्चारण करते थे और कृष्ण से विरह अनुभव करते थे। जितना भगवान से विरह महसूस हो रहा है उतना हम उन्नति कर रहे हैं। हाँ, हमें अभी नहीं होता महसूस, मंगल आरती जाने में नहीं होता, जस्ट प्रसादम में विरह होता है। प्रसादम हॉल में नहीं गया आज मैं, हाँ तो विरह होता है, लेकिन टेम्पल में दर्शन करने जाना मुझे तो नहीं होता पर्सनली कभी विरह। हाँ, जाए कि नहीं आज ना, बाकी चीज़ों में विरह होता है, ये चीज़ नहीं मिली या वो चीज़ खो गई या फिर, हाँ, क्योंकि जिस चीज़ से हमारा अटैचमेंट होता है उसी चीज़ से हमें क्या होता है, विरह होता है। तो माधवेंद्रपुरी को अटैचमेंट था कृष्ण से, इसलिए उनको मृत्यु के समय या शरीर छोड़ रहे थे तो विरह का अनुभव हो रहा था। और वो कहते थे, अये दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोकेशे हृदयम तदलोक कातरम दयित भ्राम्यति किं करोमि हम। तो वो क्या कहते थे श्रीमती राधा रानी के मूड में कि हे मेरे कृपालु स्वामी, हे मथुरा नाथ, हे मथुरा पति, आपके दर्शन मुझे कब होंगे। ऐसा कौन कहता है, श्रीमती राधा रानी, क्योंकि कृष्ण छोड़ के चले गए थे मथुरा, वापस नहीं आए। हाँ, मेरा आपका दर्शन न कर पाने के कारण मेरा हृदय बहुत अस्थिर हो उठा है, तो बताओ अभी मैं क्या करूँ। हाँ, तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी कृष्ण का विरह अनुभव कर रही थी वृंदावन में जब कृष्ण द्वारका चले गए थे, और उसी प्रकार की जो भावना श्रीपाद माधवेंद्रपुरी प्रकट कर रहे थे। और उसी समय उनका एक शिष्य था, दो शिष्य, एक माधवेंद्रपुरी, एक रामचंद्रपुरी, ईश्वरपुरी। तो ईश्वरपुरी की खासियत क्या थी कि अपने गुरु के वो बिल्कुल तत्पर थे सेवा में। हाँ, मल मूत्र या सब कुछ साफ करते थे, उनको कृष्ण लीला पढ़ के सुनाते थे उनके अंतिम समय में माधवेंद्रपुरी पाद को। और दूसरा जो शिष्य था रामचंद्रपुरी, वो जाके कहता था, आप क्यों रो रहे हैं, माधवेंद्रपुरी कृष्ण के विरह में रो रहे हैं, लेकिन आप क्यों रो रहे हैं, आपको तो निराकार ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए, ब्रह्म में लीन होना चाहिए। माधवेंद्र कहते, तुम मेरे नजर से यहाँ दूर हो जाओ, इनको भगा देते वहां से। तो उनके आंखों से कहते, दूर हो जाओ, हाँ हाँ, तुम्हारा दर्शन नहीं करना चाहता हूँ। तो कई बार गुरु को उपदेश देने लगता है शिष्य, है कि नहीं, वो सोचता है मैं अपने गुरु से ज्यादा अधिक जानता हूँ। हाँ, माधवेंद्रपुरी अप्रसन्न हुए तो उनके आध्यात्मिक जीवन ही खत्म हो गया रामचंद्रपुरी का। और उनके अंदर ये गुण आया, फॉल्ट फाइंडिंग, क्या, दोष देखना, बहुत डेंजर ये गुण है। तो रामचंद्रपुरी को वो त्याग देते हैं एक प्रकार से, और माधवेंद्रपुरी ये उस समय कृष्ण के विरह में अपना शरीर छोड़ देते हैं और भगवान की सेवा में निरंतर लगते हैं। तो तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल की सेवा का वर्णन किया, गोपीनाथ की सेवा का वर्णन किया, माधवेंद्रपुरी किस प्रकार से करते हैं, और उस चरित्र का वर्णन अपने भक्तों के सामने किया और स्थापित किया कि कितना अद्भुत भक्ति थी माधवेंद्रपुरी पाद की, कि कृष्ण के आनंद के लिए वो ट्रबल स्वीकार कर किया उन्होंने, हाँ किया कि नहीं, हाँ चंदन लाने जाना, इतना इस प्रकार से जो भक्त है ये लीलास केवल हमें वो नहीं है कि रात को जो ग्रैंड मदर है वो सुनाती है, हाँ क्या कहते हैं उसको,
लोरी
लोरी, हाँ हाँ बेड टाइम स्टोरीज, ग्रैंड मदर टेल्स, हाँ तो ये वैसी कथा ये नहीं है, हाँ ये क्या है, इसको इनको श्रवण करके हमें समाधि में जाना है, समाधि क्या है, वर्क नाउ समाधि लेटर, यह है कि उनको श्रवण करके उन आचार्यों का मूड, उनकी भावना, हाँ उसको हमें सुन के हमें भी उसी प्रकार के गुण अपने अंदर विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, हाँ तो हम रोज सुनते हैं तो माधवेंद्रपुरी की ये कोई खासियत है तो उनको हम अपने जीवन में लाने का सोच सकते हैं कि आज से आई हैव टू कल्टिवेट दिस क्वालिटी, माधवेंद्रपुरी का ये गुण मुझे बहुत ये करता है, मुझे अपने हृदय में लाऊंगा, तो इस प्रकार से भक्त ये होता है, उसको एंकरेजमेंट मिलता है जब वैष्णव के बारे में सुनते हैं और उसके हृदय वो उसका डिटर्मिनेशन भी और स्ट्रांग होता है, तो इसलिए ये श्रवण करना भी एक सेवा है उन वैष्णव के प्रति। इस प्रकार से श्रीपद माधवेंद्रपुरी का जीवन चरित्र है जिसका हमें स्मरण करना चाहिए, कभी कभी नहीं रेगुलर ही, और सुनाना भी चाहिए भक्तों को, चर्चा करनी चाहिए आपस में, हाँ तो उससे क्या होगा कि हमें ध्यान रहेगा भगवत सेवा करने के लिए और हम उत्साहित रहेंगे। ठीक, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पाद के, चैतन्य देव के, कोई समीक्षा चर्चा,
मुझे प्रश्न है, जो हमारे हाथ में ये ग्रंथ होते हैं तो मैं ऐसे प्रचार नहीं
कर सकते हैं, नोटबुक है उसको साइड में रख, नोटबुक नीचे भी रख सकते हैं हम, उसके ऊपर बुक्स रख सकते
हैं,
कृष्णा बुक है तो नहीं करना चाहिए लेकिन जगह है हमें रखने के लिए, हाँ तो कर सकते, या आपने जैसे धोती के ऊपर रखा है तभी करण कर सकते करना, इसको हम लागू कर सकते हैं। अभी इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी यहाँ रहूंगा प्रसाद अपने आप आ जाएगा प्रसाद हमारे से, हाँ नहीं ये लेजीनेस है, ये क्या है, ये अयाचिक वृत्ति नहीं है, ये आलस्य का वृत्ति है, आलस्य वृत्ति, तो मतलब एक्चुअली हम उसको इस प्रकार से धारण कर सकते हैं कि जो नेसेसिटीज है, जेन्युइन आवश्यकताएं हैं, उनको हम जस्ट स्वीकार करें, है ना, जो नॉर्मल आवश्यकताएं हैं हमारी उनको हम स्वीकार करें, बाकी जिनको हम आवश्यकताएं ना बनाए कुछ है, और ऐसी आवश्यकताएं जो रियली नेसेसरी नहीं, आवश्यक नहीं है, उनको हम एंटरटेन ना करें, और अधिक जो जेन्युइन आवश्यकताएं हैं, सोचो अभी मेरा इनफ है त्री धोतियाँ कुर्ताज ना, हाँ तो फिर ठीक है, मुझे वो मेरी आयाची कुर्ती एक प्रकार से, हाँ इसमें भी संतुष्ट हूँ, है ना कि और टू थ्री मोर धोती कुर्ताज मैं स्वीकार करूँ, हाँ तो जेन्युइन जो अभी हमारे लिए तो वही है कि जितना जेन्युइन आवश्यकताएं हैं वो हम ये करें लागू करें, और जैसे प्रसादम में भी एक, हाँ कई चीज़ें में भी सोचो, फाइव डिफरेंट सब्जीज है, हाँ चलो कृष्ण ने तीन दो सब्जियाँ मुझे मिली हैं, दिस हैप्पी, मैं क्या हूँ आनंदित हूँ, और तीसरी सब्जी के लिए मैं घूमना नहीं है प्लेट लेके यहाँ से उस कोने से यह कोने, ऑलरेडी कृष्ण की कृपा से दो सब्जियाँ तो मिली हैं, तो ये अच्छी कुर्ती है हमारे लिए, है ना, ज़्यादा इंडेवर नहीं, इसके लिए कृपा को समय क्या कहते हैं, प्रयास, अच्छा षडबीर भक्ति विनाशक, तो कुछ चीजें हैं, ये ट्रेनिंग का एक पार्ट है। अब हम अपने आप को कैसे ट्रेन कर रहे हैं साथ साथ, अलग अलग सिचुएशन पर वो डिपेंड होता है। हाँ हाँ नहीं ठीक है, ठीक है, 12:30 हो गए।